2020-21 वित्त वर्ष आधा बीत चुका है और अब यानी इस महीने गृह मंत्रालय ने ये बताया है कि कौन सा राज्य कितने वीजा जारी कर सकता है, लेकिन जो वीजा केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं उसकी प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही है। पिछले अक्टूबर 21 के बाद से एक भी वीजा इनविटेशन जारी नहीं किया गया है, जो बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि वीजा होपफुल जो हैं, वीजा एप्लीकेंट्स जो हैं, वो इन इनविटेशंस की इंतजार में रहते हैं। और गृह मंत्रालय हर महीने एक इनविटेशन राउंड आयोजित करता है जिसके आधार पर वीजा जारी किए जाते हैं। पिछला राउंड 21 अक्टूबर को हुआ था जिसमें सिर्फ 110 लोगों को इनविटेशन भेजा गया था। उसके बाद से अब तक कोई वीजा इनविटेशन जारी नहीं किया गया है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार जानबूझकर कम वीजा इनविटेशन जारी करना चाहती है ताकि स्थानीय बेरोजगारों को नौकरियां मिल सकें। इस बारे में हमने बात की इमिग्रेशन लॉ एक्सपर्ट अबुल रिजवी से, जो गृह मंत्रालय में डेप्यूटी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। सो मिस्टर रिजवी, एज वी नो दैट नो स्किल्ड इंडिपेंडेंट इनविटेशंस हैव बीन इश्यूड सिंस 21st अक्टूबर, व्हिच वाज द लास्ट राउंड बाय डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, हाउ डू यू लुक एट इट?
माय सस्पिशन इज द डिपार्टमेंट इज गोइंग स्लो इन टर्म्स ऑफ बोथ स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजास as well as state-sponsored visas. So the invitations that were issued on the 21st of October, as you know, were very small. They might as well have not taken place, they were so small. For the year to date, the number of invitations is very small. The allocation for state-sponsored visas, the full year allocation was only recently finalized. We don't know what the allocation is, but we know it was recently finalized. It was finalized in December, which is extraordinarily late for a financial year that started in July. Both of those signal to me a strong likelihood the government is planning on delivering the migration program in 2020-21 at a level substantially below the ceiling of 160,000.
What purpose would it serve, Mr. Rizvi, if that's the case? So what purpose would it serve?
Well, it would be consistent with the way that past governments have managed migration during periods of very high unemployment. So in the 1991 recession, the government cut the migration program very significantly. In the 82-83 recession, it did the same. And in the recession of the mid-70s, it did the same. There's a long history of governments cutting the migration program when unemployment is very high. When the government announced the ceiling being retained at 160,000, I was very surprised. I suspect that they've kept the ceiling in place, but their actual intention is to deliver the program below that level.
What will be the implications if the migration is substantially lower?
Well, in the short term, what that means, I mean, if the government did deliver the program at 160,000, and if it retained 4-year wait for access to Social Security for newly arrived migrants, with the very high levels of unemployment currently, that would have risked a large number of people being unemployed but with no government support available to them for 4 years. That would risk large numbers of people becoming destitute. I think what the government is keen to do is to avoid that circumstance, which was what we did from early 1991. We avoided growing the program too quickly until unemployment had fallen sufficiently. But of course, we need to remember in 1991, there was only a 6-month wait for access to Social Security. That is now 4 years, a very different set of circumstances.
Well, thank you so much, sir, for sparing time and sharing your views. Thank you very much.
You're welcome.
इस बारे में हमने गृह मंत्रालय से भी बात की। मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस वित्त वर्ष का माइग्रेशन प्रोग्राम मंत्री को जरूरत के मुताबिक बदलाव का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि सरकार माइग्रेशन और वीजा सेटिंग्स पर बारीकी से नजर बनाए हुए है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि देश की आर्थिक और स्वास्थ्यगत जरूरतों के मुताबिक उन्हें बदला जा सके और ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए रोजगार के मौके कम न हों।